हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एक रात और बीत गई थी। अगला सवेरा सबकी जिंदगी में कुछ बदलाव लेकर आया था। वर्षा के न होने पर प्रेम को खाने पीने की दिक्कत हुई। अपना सब काम उसे खुद ही करना पड़ा। रोज की तरह सुबह उठते ही उसे अपनी पत्नी और बेटे को देखने का मौका भी नहीं मिला। वर्षा को आज सब खुद से नहीं देखना पड़ा। गरिमा जी ने सुबह उठते ही उसके बेटे की मालिश करके उसे तैयार कर दिया था और काम भी संभाल लिए थे, इसलिए वर्षा को अपने बेटे के साथ पूरा वक्त मिल रहा था। गरिमा जी का व्यवहार तो ठीक था, पर मानसी और अवधेश जी ने उसे और उसके बेटे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि मानसी को बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए बच्चे के लिए उसके मन में लालच आया, पर प्रेम ने पहले और अभी जो किया उसके वजह से उसके मन में खटास आ गई थी, इसलिए वो उसके बच्चे से भी दूर ही रही। प्रीति और आयुष्मान की आज की सुबह रोज जैसी ही हुई। दोनों जब सो रहे थे तभी उनका बेटा उठ गया था। कुछ देर तो वो शांत रहा, फिर भूख लगते ही उसका रोना शुरू हो गया। उनके नन्हे राजकुमार की किलकारियों ने उनके दिन की शुरुआत की, पर आज की सुबह रोज से कुछ अलग थी। जहां प्रीति बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसकी मालिश करने में लग गई, वहीं आयुष्मान सीधे किचन में पहुंचा। घर के बाकी कामों के लिए तो मेड आने वाली थी, पर किचन का काम तो उनके ही जिम्मे था। प्रीति के मालिश करने के बाद बच्चा वापस हो गया। प्रीति उसे सुलाकर बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर वो किचन में पहुंची। आयुष्मान खाना बना रहा था जब प्रीति ने वहां कदम रखा। बेबी सो गया? प्रीति को वहां देखते ही आयुष्मान ने उसे सवाल किया। हाँ, वो तो सो गया। अब आप बता दीजिए कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी, प्रीति ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा। जाओ, जाकर नहाकर तैयार हो जाओ। वो उठ गया तो कुछ करने नहीं देगा तुम्हें। या तुम जाकर उसके पास बैठो, मैं यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ, फिर मैं बेबी के पास रहूँगा और तुम नहा लेना। प्रीति ने सर हिला दिया और वापस कमरे में चली गई। बच्चा अभी सो रहा था तो प्रीति नहाने चली गई। कुछ देर बाद आयुष्मान कमरे में आया। बच्चा अब भी सो रहा था। आयुष्मान ड्रॉअर से अपना वॉलेट निकाल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और प्रीति ने वहां कदम रखा। वॉलेट लेकर आयुष्मान जैसे ही पलटा, उसके कानों में प्रीति की आवाज़ पड़ी। कहीं जा रहे हैं आप? आयुष्मान ने उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ निगाहें घुमाते हुए जवाब दिया। वो सब्जी वाले के आने का वक्त हो गया है तो सब्जी लेने जा रहा हूँ। तुम बच्चे के पास ही रहना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। आयुष्मान का जवाब सुनकर प्रीति ने दीवार घड़ी में टाइम देखा, फिर उलझन भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, आपने अब तक नहाया नहीं है, क्या आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? आयुष्मान ने तुरंत ही इनकार में सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अकेले बच्चे को संभालने में दिक्कत होगी तुम्हें, इसलिए छुट्टी ले ली है मैंने। चलो, अब तुम बेबी के पास रहना, मैं अभी आता हूँ सब्जी लेकर। प्रीति ने सर हिला दिया। आयुष्मान वहां से निकलकर सीधे नीचे पहुंचा और सब्जी वाले की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते में आंटी मिल गईं। आयुष्मान ने उन्हें नमस्ते किया, जिस पर आंटी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बेटा, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो, कहीं गए थे क्या? आंटी के सवाल पर आयुष्मान ने हामी भरते हुए कहा। जी आंटी, वो प्रीति हॉस्पिटल में एडमिट थी तो दिल्ली गया हुआ था, कल रात ही लौटा हूँ। प्रीति के हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर आंटी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वो कुछ परेशान सी नजर आने लगी। आयुष्मान के चुप होते ही उन्होंने घबराए स्वर में सवाल किया, क्या हुआ प्रीति को? हॉस्पिटल में क्यों भर्ती थी वो? सब ठीक तो है? प्रीति और आपका बच्चा कुशल से तो है? उन्हें प्रीति के लिए यूं परेशान होते देखकर आयुष्मान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। असल में प्रीति गिर गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। तब हालत चिंताजनक थी, पर अब सब ठीक है। प्रीति और हमारा बच्चा दोनों कुशल से हैं। बीती रात ही दोनों के साथ वापस लौटा हूं मैं। प्रीति और बच्चे के ठीक होने की खबर सुनकर आंटी को कुछ राहत महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उनकी बहुत बड़ी चिंता खत्म हो गई हो। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया, फिर आयुष्मान को देखकर अगला सवाल पूछ लिया, बेटा हुआ या बेटी? बेटा हुआ है आंटी, समय से पहले डिलीवरी हुई है तो थोड़ा कमजोर है पर ठीक है। लाख लाख शुक्र भगवान का जो प्रीति और आपका बच्चा कुशल से है, बधाई हो बेटा। थैंक यू आंटी, आप भी आकर देख लीजिए हमारे बेटे को और प्रीति से मिल भी लीजिएगा, आयुष्मान के बुलाने पर आंटी ने मुस्कुराकर कहा। जरूर आएंगे बेटा, बच्चे को देखेंगे भी, उन्हें लाड भी करेंगे, पर शाम तक आ पाएंगे, आयुष्मान ने मुस्कुराकर हामी भर दी। कुछ देर में आयुष्मान सब्जी लेकर वापस अपार्टमेंट पहुंचा। चौखट के अंदर पहला कदम रखते ही उसके कानों में एक मीठी सी धीमी सी आवाज पड़ी। यह आवाज उसके बेटे की थी और शायद वो रो रहा था। आयुष्मान आवाज सुनकर व्याकुल हो गया। उसने झट से सब्जी किचन में रखी और कमरे की तरफ दौड़ गया। रूम में पहला कदम रखते ही उसकी नजर सामने टहलती प्रीति पर पड़ी, जो बच्चे को अपनी बाहों में थामे उसे पुचकारते हुए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर बच्चा आंखें बंद किए किलकारियां मारकर बस रोए ही जा रहा था। प्रीति काफी परेशान लग रही थी, शायद बच्चे को चुप करवाते हुए थक चुकी थी वो। बच्चे को घुमाते हुए प्रीति की नजर आयुष्मान पर पड़ी तो उसने मुंह बिचकाकर कहा, देख लीजिए अपने बेटे को कितना परेशान कर रहा है मुझे। पिछले 15 मिनट से इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये चुप ही नहीं हो रहा, दूध भी नहीं ले रहा और घुमाने पर भी शांत नहीं हो रहा। आयुष्मान जो कुछ बच्चे को रोते देखकर परेशान था, प्रीति का परेशान चेहरा देखकर और उसकी बातें सुनने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी और उसके पास आकर उससे बच्चे को लेते हुए बोला, डायपर चेक किया तुमने इसका? कहीं भर तो नहीं गया या उसके पॉटी तो नहीं कर दी उसमें? तभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ये। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति ने सर झुकाते हुए इनकार में सर हिला दिया। आयुष्मान ने बच्चे को उसके बिस्तर पर लिटाया और उसका डायपर चेक किया तो उनके पंडित बेटे ने डायपर गंदा कर दिया था, इसलिए रो रोकर घर सर पर उठाया हुआ था क्योंकि उसे घिन होती थी, एक मिनट में गंदे में नहीं रहता था। आयुष्मान ने उसको साफ करके दूसरा डायपर पहना दिया तो बच्चा अपने आप चुप हो गया। प्रीति ये देखकर हैरान थी कि माँ वो है पर बच्चा कब क्या करता है, किस बात पर कैसे रिएक्ट करता है, या आयुष्मान उससे ज्यादा जानता है।